एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं जिसने रिश्तों को समझने का नजरिया ही बदल दिया था। डॉक्टर एरिक बर्न की गेम्स पीपल प्ले।
हाँ, ये किताब उन मनोवैज्ञानिक खेलों के बारे में है जो हम सब मतलब अनजाने में खेलते रहते हैं अपने रिश्तों में।
और कमाल की बात यह है, करीब 60 साल हो गए इसे छपे हुए, पर आज भी ये उतनी ही रेलेवेंट लगती है ना?
बिल्कुल, शायद इसलिए कि हम आज भी तो ये महसूस करते हैं। हमारे रिश्ते, परिवार हो, दोस्त हो या ऑफिस, कई बार लगता है जैसे अटक गए हैं।
हाँ, एक ही ढर्रे पे चलते रहते हैं, निराशा होती है।
सही कहा। तो एक किताब इन्हीं पैटर्न्स को, इन पहेलियों को समझने में मदद करती है।
तो आज हम यही कोशिश करेंगे, इन मनोवैज्ञानिक खेलों को थोड़ा खोल कर देखें, समझें कि ये हैं क्या, हम क्यों खेलते हैं और क्या इनसे बच के बेहतर रिश्ते बनाना मुमकिन है।
बिल्कुल, तो शुरू करते हैं उस इंसान से जिसने ये सब सोचा।
डॉक्टर एरिक बर्न 1910 से 1970 तक कनाडाई अमेरिकी मनोचिकित्सक थे और फाउंडर माने जाते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस या TA के।
हाँ, TA ये मनोविज्ञान को देखने का एक अलग तरीका था जो सीधे हमारे आपसी मर्ताव, हमारी बातचीत पर फोकस करता है।
उनकी खास बात क्या थी, मतलब वो दूसरों से अलग कैसे थे?
देखिए, उन्होंने ना फ्रायड के जो पारंपरिक तरीके थे उनसे थोड़ा हटकर सोचा। फ्रायड अचेतन मन, दबी हुई इच्छाएं, उन सब गहराइयों में जाते थे। बर्न ने कहा, रुको, देखते हैं लोग असल में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, क्या पैटर्न है उनके व्यवहार में, जो दिख रहा है उस पर ध्यान दो।
अच्छा, यानी प्रैक्टिकल अप्रोच।
हाँ बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुश्किल मनोवैज्ञानिक विचारों को बहुत सरल भाषा में समझाया, जैसे गेम्स, स्ट्रोक्स, पेरेंट अडल्ट चाइल्ड।
हाँ, ये शब्द तो बहुत सुने हैं, आम आदमी भी समझ सकता है।
यही तो, उन्होंने साइकोलॉजी को किताबों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया, उनके अपने जो अनुभव थे मनोचिकित्सा में, खासकर ग्रुप थेरेपी में। उससे उन्होंने देखा कि लोग कैसे बार बार एक ही तरह के रोल में, एक ही तरह के संवाद में फंस जाते हैं।
जैसे कोई नाटक चल रहा हो।
बिल्कुल, जिसकी स्क्रिप्ट पहले से तय है। यहीं से गेम्स पीपल प्ले का आइडिया आया।
तो आते हैं किताब के मूल विचार पर, बर्न क्या कहते हैं?
बर्न का कहना है कि हमारी ज्यादातर जो सोशल बातचीत होती है ना, वो ऊपर से तो सामान्य लगती है,
हाँ,
पर असल में वो अनजाने में खेले जा रहे मनोवैज्ञानिक खेल हैं। ये व्यवहार के सेट पैटर्न्स हैं।
सेट पैटर्न मतलब?
मतलब हम अपनी कुछ अंदरूनी भावनात्मक जरूरतें पूरी करने के लिए और एक जानी पहचानी सी, भले ही वो दुखदाई हो, फीलिंग बनाए रखने के लिए ये पैटर्न दोहराते हैं।
अच्छा, और जो सबसे चौंकाने वाली बात शायद इसमें है,
हाँ,
वो ये कि ये खेल जो है वो सच्ची करीबी, असली इंटिमेसी का एक तरह से विकल्प बन जाते हैं।
सब्स्टिट्यूट,
विकल्प मतलब हम असली जुड़ाव से बचने के लिए खेल खेलते हैं।
हाँ, ये हमें जुड़ने का एहसास तो देते हैं, पर वो जो असली करीबी में अपनी कमजोरियां दिखाने का डर होता है ना,
हाँ,
वल्नरेबिलिटी, उससे बचा लेते हैं।
ओह, ये तो काफी गहरा विचार है।
बिल्कुल, और यही वजह है कि रिश्ते अक्सर दोहराव वाले, थकाने वाले क्यों लगते हैं, क्यों उनमें बेमतलब के झगड़े होते रहते हैं, जबकि हम चाहते तो अच्छा कनेक्शन ही है।
सही बात है।
तो बर्न मानते थे कि अगर हम इन खेलों को पहचान लें, समझ लें कि ये काम कैसे करते हैं, तो हम इन पैटर्न को तोड़ सकते हैं।
और ये सिर्फ पति पत्नी या दोस्तों के बीच की बात नहीं है?
नहीं नहीं इसका दायरा बहुत बड़ा है। परिवार के अंदर के खेल, ऑफिस की पॉलिटिक्स, पार्टियों के हल्की फुल्की बातें, सबके पीछे खेल हो सकते हैं,
हर जगह। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं, TA के कुछ बेसिक बातें समझते हैं जो इन खेलों को समझने के लिए जरूरी हैं।
बिल्कुल, सबसे पहले हैं अहम अवस्थाएं या ईगो स्टेट्स।
ईगो स्टेट्स,
हाँ, बर्न के हिसाब से हर इंसान के अंदर तीन तरह के मैं होते हैं, या कह लें तीन अवस्थाएं जिनसे वो ऑपरेट करता है, पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड।
पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड।
हाँ, पेरेंट अवस्था में वो सब आता है जो हमने सीखा है, नियम, मान्यताएं, व्यवहार, जो बचपन में माँ बाप से, बड़ों से, समाज से लिया। ये क्रिटिकल भी हो सकता है,
जैसे तुम्हें हमेशा ये गलत है।
हाँ, या फिर नर्चरिंग, देखभाल करने वाला भी हो सकता है।
ठीक है, ये हुई पेरेंट अवस्था।
फिर एडल्ट, अडल्ट अवस्था है निभारा लॉजिकल, शांत, ऑब्जेक्टिव हिस्सा, जो अभी इसी पल पर फोकस करता है, जानकारी लेता है, सोच समझकर फैसला करता है, सवाल पूछता है, फैक्ट्स क्या हैं, नतीजा क्या होगा।
बिल्कुल, तर्क वाला हिस्सा।
हाँ, और तीसरा चाइल्ड,
चाइल्ड अवस्था, इसमें हमारे बचपन की सारी फीलिंग्स, जरूरतें, डर, वो सब नेचुरल रिएक्शंस भरे होते हैं।
ये फ्री खेलने वाला हो सकता है,
मुझे चाहिए।
हाँ, या माहौल के हिसाब से ढला हुआ अडेप्टेड चाइल्ड जो बड़ों को खुश करने में लगा रहता है, या फिर लिटिल प्रोफेसर, बहुत इंट्यूटिव, थोड़ा मैनिपुलेटिव भी।
और हम इन तीनों के बीच स्विच करते रहते हैं।
बिल्कुल, लगातार हमारी बातचीत इसी पर टिकी है कि कौन किस अवस्था से बोल रहा है और दूसरा किस अवस्था से सुन रहा है।
यहीं पर स्ट्रोक्स का कॉन्सेप्ट आता है।
स्ट्रोक्स?
हाँ, स्ट्रोक्स मतलब सोशल रिकॉग्निशन की यूनिट्स। सीधी भाषा में कहें तो किसी भी तरह का ध्यान या पहचान।
ध्यान कैसा भी?
हाँ, मुस्कान, तारीफ या फिर गुस्सा, डांट, कुछ भी। बर्न कहते हैं कि इंसान को स्ट्रोक्स की उतनी ही जरूरत है जितनी खाने की, मनोवैज्ञानिक तौर पे।
लेकिन ये जरूरत ही हमें मुश्किल में डाल सकती है ना, अगर अच्छे स्ट्रोक्स ना मिले।
बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर पॉजिटिव स्ट्रोक्स नहीं मिलते तो हम अनजाने में नेगेटिव स्ट्रोक्स, जैसे डांट, आलोचना पाने वाले काम करने लगते हैं।
क्योंकि कुछ नहीं से तो
नेगेटिव ही सही, कोई भी स्ट्रोक न मिलने से बेहतर है।
ओह,
और यहीं से खेल शुरू होते हैं। ये खेल अक्सर नेगेटिव स्ट्रोक्स पाने का एक पक्का तरीका बन जाते हैं।
अच्छा,
अब आते हैं ट्रांजैक्शंस पर, मतलब लोगों के बीच इन्हीं ईगो स्टेट्स का लेन देन, संवाद।
इसके भी प्रकार बताएं बनने?
हाँ, तीन तरह के, कॉम्प्लीमेंट्री, क्रॉस्ड और अल्टेरिया। कॉम्प्लीमेंट्री में बातचीत स्मूथ चलती है, जैसे अडल्ट से अडल्ट।
ओके, और क्रॉस्ड?
क्रॉस्ड में बातचीत अटक जाती है, पटरी से उतर जाती है। मान लो किसी ने अडल्ट से पूछा रिपोर्ट तैयार है, और जवाब पेरेंट से चाइल्ड को डांटने जैसा आया, तुम्हें हमेशा लास्ट मिनट पर क्यों याद आता है।
हाँ, यहां तो गड़बड़ हो जाएगी,
संवाद रुक गया। और तीसरा है अल्टेरियर ट्रांजैक्शन।
अल्टेरियर, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, यही खेल होते हैं क्या?
बिल्कुल सही पकड़ा, यही है खेलों की जड़। अल्टेरियर ट्रांजैक्शन में दो लेवल पर मैसेज जाता है, एक सोशल लेवल पर जो ऊपर से दिखता है, सुनाई देता है, अक्सर अडल्ट टू अडल्ट।
ठीक है।
और दूसरा मनोवैज्ञानिक लेवल पर, जो छुपा हुआ होता है, असली मतलब, अक्सर अडल्ट टू चाइल्ड या पेरेंट टू चाइल्ड। वो सेल्समैन वाला उदाहरण याद है?
हाँ, बताइए।
सोशल लेवल अडल्ट टू अडल्ट, ये घड़ी शानदार है पर शायद आपके बजट से ज्यादा हो। मनोवैज्ञानिक लेवल अडल्ट टू चाइल्ड, देखते हैं तुम इसे खरीदने की हिम्मत करते हो या नहीं।
अच्छा, ये डबल मीनिंग बातें, यहीं से खेल शुरू होते हैं।
एक्शंस की पूरी सीरीज होती है जिसका अंत पहले से तय होता है, और वो अंत अक्सर एक नेगेटिव मनोवैज्ञानिक पे ऑफ होता है, एक भावनात्मक नतीजा।
पे ऑफ मतलब कोई इनाम?
हाँ, एक तरह का भावनात्मक इनाम। ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है जिसका क्लाइमेक्स पहले से पता होता है।
पर सवाल फिर वही, अगर नतीजा नेगेटिव है तो हम ये खेलते क्यों हैं? फायदा क्या है?
कई कारण हैं। एक, ये टाइम पास करने का तरीका है जब सच्ची करीबी मुश्किल लगे। दूसरा, स्ट्रोक्स मिलते हैं भले नेगेटिव हो। तीसरा, ये हमें असली इंटिमेसी की घबराहट से बचाता है। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, ये हमारी लाइफ स्क्रिप्ट को सही साबित करता है।
लाइफ स्क्रिप्ट?
हाँ, वो कहानी जो हमने बचपन में अपने बारे में बना ली होती है, जैसे मैं हमेशा हारता हूँ या मुझसे कोई प्यार नहीं करता। खेल उस कहानी को कन्फर्म करते हैं।
हर खेल का एक स्ट्रक्चर होता है।
हाँ, कौन यानी चारा डालना, गिमिक सामने वाले की कोई कमजोरी पकड़ना, मूव्स खेल की चालें, और अंत में पे ऑफ, वो जानी पहचानी नेगेटिव फीलिंग, गुस्सा, उदासी, गिल्ट।
कुछ आम खेलों के उदाहरण देखें जो बर्न ने बताए।
बिल्कुल, एक बहुत क्लासिक है, व्हाई डोंट यू यस बट।
अरे हाँ, ये तो बहुत सुना है, कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है, सलाह मांगता है।
हाँ, और आप जो भी हल बताओ वो उसे तुरंत काट देता है। हाँ, ये तो ठीक है लेकिन, या ये ट्राई किया था पर।
इसमें से मिलता क्या है, पे ऑफ क्या है?
पे ऑफ ये है कि खिलाड़ी ये साबित कर देता है कि उसकी प्रॉब्लम का कोई हल है ही नहीं, वो बेचारा है, और सलाह देने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसकी मान्यता पक्की होती है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता।
एक और खेल है, इफ इट वरंट फॉर यू,
IWFY।
हाँ, इसमें व्यक्ति अपनी किसी कमी या नाकामी के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराता है। अगर तुम ना होते तो, वो मिसेज व्हाइट वाला उदाहरण।
हाँ, बताइए। मिसेज व्हाइट शिकायत करती थी कि पति बाहर नहीं जाने देते, वरना वो ज्यादा सोशल होती, पर थेरेपी में पता चला उन्हें खुद ही बाहर जाने से घबराहट होती थी।
अच्छा,
पति का रोकना एक बहाना बन गया, अपनी घबराहट का सामना नहीं करना पड़ता था। पे ऑफ क्या हुआ? जिम्मेदारी से बचना और शिकायत पालते रहना।
ये तो बहुत कॉमन लग रहा है, और वो थोड़ा तीखे नाम वाला खेल नाउ आई हैव गॉट यू यू सन ऑफ अ बिच
नाइगी सॉब। हाँ, इसमें खिलाड़ी घात लगाकर बैठा रहता है, दूसरे की छोटी सी गलती का इंतजार करता है
और जैसे ही मौका मिला
पूरी ताकत से बरस पड़ता है, पुराने सारे गड़े मुर्दे उखाड़ देता है। पे ऑफ होता है राइचियस एंगर, मतलब मैं सही था तुम गलत हो वाली फीलिंग, बहुत पावरफुल फीलिंग।
ये ऑफिस वगैरह में ज्यादा होता होगा जहाँ पावर का खेल है।
हाँ बिल्कुल, जहाँ कोई बस मौके की ताक में है दूसरे को नीचा दिखाने के। फिर एक है किक मी,
किक मी
फोड़ना
और पे ऑफ
विक्टिम महसूस करना, अपनी मैं तो हूँ ही लूजर वाली स्क्रिप्ट को मजबूत करना।
और एंटीटॉफल, ये तो बहुत ही आम है।
हाँ हाँ, इसमें लोग किसी चीज या हालात की बुराई करके, शिकायतें शेयर करके बॉन्डिंग करते हैं।
देखो जमाना कितना खराब है,
सरकार कुछ नहीं करती।
हाँ, नेशनल पास टाइम जैसा।
पे ऑफ है दूसरों से सुपीरियर फील करना, अपनी जिम्मेदारी से ध्यान हटाना और एक नेगेटिव ग्रुप आइडेंटिटी बनाना।
इन सब खेलों के बारे में जानकारी लग रहा है कि हमारे व्यवहार के पीछे कितना कुछ चलता रहता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता।
बिल्कुल, और यहीं से कुछ जरूरी थीम्स निकल कर आती हैं। पहला तो ये है कि ये खेल कोई अजीब बात नहीं है, ये बहुत कॉमन इंसानी पैटर्न है, हम सब खेलते हैं।
दूसरा, ये खेल अक्सर असली करीबी सच्ची इंटिमेसी का विकल्प बन जाते हैं, हमें जुड़ाव का झूठा एहसास देते हैं पर सेफ रखते हैं।
हाँ, और तीसरा वो स्ट्रोक इकोनॉमी वाला आइडिया, हमें पहचान ध्यान चाहिए, अगर पॉजिटिव नहीं मिला तो नेगेटिव ही सही,
झगड़ा करके ही सही पर ध्यान तो मिला।
बिल्कुल, और लाइफ स्क्रिप्ट का आइडिया कि बचपन में हमने अपनी कहानी लिख ली है और हम उसी को सच साबित करने वाले खेल खेलते हैं, ये थोड़ा डरावना भी है।
हर खेल का एक पे ऑफ होता है, वो जानी पहचानी नेगेटिव फीलिंग, गुस्सा, उदासी, डर, हम सोचते हैं हम इनसे बचना चाहते हैं
पर अनजाने में हम ऐसे हालात बनाते जहां यही महसूस हो, क्योंकि वो हमारी स्क्रिप्ट का हिस्सा है, वो फीलिंग हमें घर जैसी लगती है।
तो क्या हम इसमें फंसे रहेंगे, कोई उम्मीद है?
उम्मीद है, जागरूकता, अवेयरनेस। बर्न कहते हैं अपने खेलों को, अपने रोल्स को पहचानना ही आजादी का पहला कदम है। लक्ष्य है ऑटोनॉमी।
ऑटोनॉमी मतलब?
ऑटोनॉमी मतलब तीन चीजें पाने की क्षमता, जागरूकता, अवेयरनेस, अभी यहां क्या हो रहा है उसे समझना, सहजता, स्पॉन्टेनियटी, बनावटीपन छोड़कर असली फीलिंग जाहिर करना, और आत्मीयता, इंटिमेसी, बिना खेल खेले ईमानदारी से दूसरों से जुड़ना।
अगर हम इसे अपने आप देखें भारत में तो इफ इट वॉरंट फॉर यू वाला खेल,
हाँ बहुत दिखता है परिवारों में, अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर, बच्चों की जिम्मेदारी न होती तो मैं भी
सही, और ऑफिस में NIGSO या यस बट
बहुत आम है, बॉस का छोटी सी बात पर भड़क जाना, मीटिंग में हर आइडिया को काटना, हाँ पर इसमें ये दिक्कत है पैटर्न वही रहते हैं, शक्ल बदल जाती है।
किताब में कुछ कोट्स भी हैं जो इन आइडियाज को समेटते हैं।
हाँ, कुछ बातें बहुत गहरी हैं, जैसे खेल की परिभाषा ही,
खेल अल्टीरियर ट्रांजैक्शन की एक श्रृंखला है जिनका एक निश्चित मनोवैज्ञानिक पे ऑफ होता है, साफ है ये रैंडम नहीं है, एक तय नतीजा पाने की कोशिश है। एक और कोट मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस क्षण कोई छोटा लड़का ये जानने लगता है कि कौन सी चिड़िया जे है और कौन सी गौरैया, वो पक्षियों को देख नहीं सकता या उनका गाना नहीं सुन सकता। इसका क्या मतलब है?
ये बताता है कि जब हम विश्लेषण में, कैटेगरी बनाने में इतने खो जाते हैं तो हम चीजों को सीधे महसूस करना भूल जाते हैं, उनका अनुभव करना भूल जाते हैं। रिश्तों में भी यही हो सकता है।
और ये कितना सीधा है, आत्मीयता एक खेल मुक्त रिश्ता है, सच्चा जुड़ाव वही है जहां खेल ना हो, ईमानदारी हो।
बिल्कुल, और ऑटोनॉमी के बारे में, जागरूकता, सहजता और आत्मीयता स्वायत्तता के तीन संकेतक हैं, ये एक तरह से मेंटल हेल्थ का गोल है।
और ये वाला तो दिमाग घुमा देता है, खेल का पे ऑफ वो भावना है जिसकी स्क्रिप्ट मांग करती है, खिलाड़ी मजे के लिए नहीं बल्कि इस पे ऑफ के लिए खेलता है, मतलब हम दुख पाने के लिए खेल खेलते हैं। अहम सवाल, इन सब बातों से हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, कैसे लागू करें?
पहला कदम तो है ध्यान देना, अपने रिश्तों में बार बार होने वाले पैटर्न्स को नोटिस करना। कोई खास झगड़ा है जो बार बार होता है? क्या हम अक्सर किसी पर इल्जाम लगाते हैं या हर सलाह को नकार देते हैं? सिर्फ पैटर्न पहचानना ही बहुत बड़ी बात है।
और पहचानने के बाद मान लो मुझे दिखा कि मैं अक्सर यस बट खेलती हूँ
तो आप कोशिश कर सकती हैं अपनी अडल्ट अवस्था को जगाने की, बजाय तुरंत हाँ लेकिन कहने के, एक पल रुकें, सोचें क्या इस सलाह में कुछ काम का है, या और सवाल पूछें।
अच्छा,
या फिर अगर सच में हल नहीं चाहिए तो ईमानदारी से कहें, मैं अभी सिर्फ अपनी बात कहना चाहती हूँ, हल नहीं ढूंढ रही। ये ज्यादा सच्चा होगा।
और ऑफिस में जहाँ पॉलिटिक्स चलती है,
वही प्रिंसिपल्स। अगर कोई आपके साथ निज़ॉब खेल रहा है, गलती पकड़कर अटैक कर रहा है, तो इमोशनल रिएक्ट करने के बजाय अडल्ट से पूछें, ठीक है गलती हुई, इसे ठीक कैसे करें?
फोकस प्रॉब्लम से हटाकर सोल्यूशन पे ले आएं।
हाँ, खेल रुक जाएगा। अगर कोई यस बट खेल रहा है तो सलाह देना बंद करके पूछें, तो आप क्या करने वाले हैं? जिम्मेदारी वापस दे दें।
पेरेंटिंग में भी ये काम आ सकता है, बच्चों के साथ।
बिल्कुल, बच्चे माँ बाप के खेल बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर पेरेंट्स जागरूक हों तो वो बच्चों को ये पैटर्न सिखाने से बच सकते हैं, बच्चों को उनकी फीलिंग समझने बताने में मदद कर सकते हैं, अडल्ट का इस्तेमाल करने को इनकरेज कर सकते हैं।
और सबसे जरूरी शायद खुद को देखना है, अपने फेवरेट खेल, फेवरेट रोल। क्या हम ज्यादातर विक्टिम बनते हैं या बचाने वाले या सताने वाले? और हमारा फेवरेट नेगेटिव पे ऑफ क्या है? गुस्सा, उदासी, डर। ये मुश्किल होगा।
मुश्किल है, पर आजादी इसी में है। जब हम अपने पैटर्न समझ जाते हैं तो हमारे पास चॉइस आ जाती है। हम चुन सकते हैं वही पुराना खेल खेलना है या कुछ नया, ज्यादा सच्चा आजमाना है।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात रही वो ये जानना कि हम अनजाने में रिश्तों को कितना स्क्रिप्टेड बना देते हैं। जैसे हम सब कोई नाटक कर रहे हैं जिसका अंत हमें पता है पर मानते नहीं।
मेरे लिए इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें दोषी नहीं ठहराती, बस समझने का एक फ्रेमवर्क देती है। कहती है, हाँ हम सब खेल खेलते हैं, पर हम जागरूक होकर इनसे निकलना सीख सकते हैं। सच्ची करीबी ऑटोनॉमी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। बर्न ने दरवाजे खोले आम लोगों के लिए।
तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपने हाल के किसी मुश्किल इंटरेक्शन के बारे में सोचें जिसमें बार बार एक ही तरह की फीलिंग आ रही थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कौन सा खेल चल रहा था और उसमें आपका क्या रोल था? क्या आप चारा डाल रहे थे, किसी की कमजोरी पकड़ रहे थे, या सिर्फ अपना तयशुदा नेगेटिव इनाम ले रहे थे? बस इस पर सोचना भी एक शुरुआत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।